नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दत्तात्रेय जी ने अलर्क को ज्ञान दिया था। ये अलर्क एक बहुत बड़े राजर्षि थे। अब उनके उपाख्यान में बताते हैं कि एक शत्रुजित नाम के राजा हुए और उनके एक राजकुमार थे रितध्वज, और बड़े शिष्ट बड़े अच्छे, छोटी अवस्था में भी रितध्वज सबके प्रिय बन गए थे क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। एक बार गालव ऋषि एक घोड़े को लेकर आए और उन्होंने शत्रुजीत से कहा कि भाई मेरे यहां एक दैत्य आता है, बहुत अत्याचारी है, मुझे बहुत तंग करता है, मैं अपने तपस्या की शक्ति से उसको भस्म तो कर सकता हूं पर ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। तुम राजा हो और हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं, तो तुम्हारा काम है उसको दमन करना। तो गालव ऋषि की बात सुनकर के शत्रुजीत ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ऋषि की सेवा करो। तो घोड़े पर बैठ गए ऋतुध्वज और गालव ऋषि के आश्रम में आ गए। यहां तक की कथा हो गई थी। तो पिता ने कहा कि पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने वहां जो जो कार्य किया वो मैं तुमको सुनाता हूं। ये कथा बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, पिता ने पूछा कि वहां गालव ने जाकर क्या, गालव के यहां जाकर रितध्वज ने जो जो कार्य किया वो बतलाओ। तो पुत्रों ने कहा, सुनो, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार रितध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुवलयाश्व गालवाश्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को मदोन्मत्त नीच दानव जानता नहीं था, इसलिए संध्योपासना में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वह दैत्य शूकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनियों के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसकी चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गया। परंतु रितध्वज का घोड़ा भी कम वेग वाला नहीं था, बड़े तेजी से हवा के समान वेग वाला सुअर का पीछा किया। वराह का रूप धारण किया हुआ वो दानव तीव्र वेग से भागता हुआ हजारों योजन दूर निकल गया और जाकर के पृथ्वी के एक बिल में, बिल के आकार में दिखाई देने वाली गड्ढे के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद गया। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए इस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सूर दिखाई नहीं पड़ा बल्कि उन्हें प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। रितध्वज को सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, उसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा दे रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया किंतु वहां तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे नगर में घूमने लगे, घूमते 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 उनको एक स्त्री दिखाई दी, बड़ी उतावली के साथ चली आ रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, ए कौन हो तुम, किसकी कन्या हो, किधर जा रही हो? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चटपट चटपट करते चढ़ गई। ऋतध्वज ने बड़ा आश्चर्य किया, घोड़े को एक जगह बांध दिया और वो भी उस स्त्री के पीछे पीछे महल में गया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे, उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी, कोई भय नहीं था। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पलंग बिछा हुआ है जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना हुआ है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी जो वहां अभी दिखाई दी थी, चंद्रमा के समान मुख वाली, सुंदर भौवें वाली, नील कमल के समान उसके नेत्र। सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा कि ये क्या बात है, ये कोई रसातल की देवी होनी चाहिए। उसकी उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित राजकुमार को देखकर सम्मान के साथ खड़ी हो गई और उनके सामने आश्चर्य से देखने लगी। वो सोचने लगी कि ये कौन आ गए, देवता यक्ष गंधर्व नाग विद्याधर ये तो नहीं आ गए, या कोई पुण्यात्मा पुरुष तो नहीं है। और वो उसको देख करके वहीं पर वापस पृथ्वी पर बैठ गई। राजकुमार ने देखा कि ये क्या करती है। राजकुमार ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूं। और हां, वो स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, वो वहां जाने किधर से निकल करके आई और एक ताड़ का पंखा लेकर व्यग्रता पूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने पूछा कि तुम इस महल में तुमने ही प्रवेश किया था, क्या तुम इसकी सेविका हो, ये कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरी सखी है। पूछा कि इसको मूर्छा क्यों आई, कह दिया आपको देखने से हुई। वह स्त्री बोली, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। ये उन गंधर्वों वह स्त्री बोली कि प्रभु, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं और ये स्त्री, ये सुंदरी उन्हीं की कन्या है, इसका नाम मदालसा है। वाह वाह। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के भीतर है। एक दिन ये मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, उसी समय उस दुष्टात्मा दानव ने अपनी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। मैं उस दिन वहां थी नहीं, और सुना है कि आगामी त्रयोदशी के दिन वह असुर इसके साथ न चाहते हुए विवाह करेगा। किंतु आप सोचो कि जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार ये दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। कल की बात है, ये बिचारी मेरी सखी गंधर्व कन्या आत्महत्या को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर मनुष्यवाणी में आश्वासन दिया, बेटी तुम चिंता मत करो, यह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकेगा, तुम महाभाग्यवती हो, मर्त्यलोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बींद डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र ही तुमको ऐसा संयोग मिलने वाला है, कोई चिंता मत करो और आत्महत्या का विचार छोड़ दो। वो कामधेनु अंतरित हो गई। मेरा नाम कुंडला है, मैं इस मदालसा की सखी हूं, मैं विंध्यवान की पुत्री हूं और पुष्कर माली की मैं पत्नी हूं। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला, तब से मैं उत्तम संगत करने के लिए और उत्तम व्रत का पालन करती हुई दिव्य गति से तीर्थों में विचरण करती रहती हूं। अभी मैं परलोक सुधारने में लगी हुई हूं। ये दुष्टात्मा पाताल केतु आज वराह का रूप धारण करके, सूर का रूप धारण करके मर्त्यलोक में गया था। सुनने में आया है कि वहां गालव ऋषि के आश्रम में वह ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट देता था। हमारे पास ये समाचार आया है कि उन मुनियों की रक्षा के लिए कोई एक शूरवीर उसके पीछे बाण का निशाना लगाए हुए दौड़ रहा था। जब तुमको मैंने देखा और मैं चटपट महल में गई थी, तो मैं ये पता लगाने के लिए गई थी कि वो राजकुमार कौन था और उसको किसने भगाया। मैं पता लगा करके यहां आ गई हूं, और मैं ये खबर देती हूं कि किसी ने उस अधम दानव को बाणों से बींद भी दिया है। अब मैं मदालसा के मूर्छित होने का कारण सुनाती हूं। सुनिए, हे मानद, मानद माने मान देने वाले, हे मानद, आपको देखते ही उस ऋषि के प्रताप से, गौ माता के प्रताप से आपके प्रति इसका प्रेम हुआ है। परंतु यह पत्नी होगी किसी और की, क्योंकि जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है उसी की होगी। इसलिए इसके मन में यह घबराहट है कि मैंने अपना प्रेम इसको किया है, इसको दिया है, और उस पाताल केतु दानव को मारने वाला क्या पता कोई और निकलेगा, तो क्या करूंगी। इस घबराहट में यह मूर्छित हो गई। जीवन भर इसे दुखी भोगना पड़ता है, क्योंकि इसके हृदय में तो आप बस गए और पति कोई और होने वाला है, और कामधेनु देवताओं की गऊ माता, उसके वचन तो कभी व्यर्थ हो नहीं सकते। मुझे इस बात का पता चला तो मैं दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और इसको मैं हवा खिलाने लगी, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और इस सखी के शरीर में कोई अंतर नहीं है। यदि यह अपने इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेगी तो मैं सर्वथा निश्चिंत होकर फिर तपस्या में लग जाऊंगी। हे महामते, हे महामानव, अब आप अपना परिचय तो दीजिए कि आप कौन हैं, यहां कैसे पधारे हैं। यहां आना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप देवता हैं कि दैत्य हैं कि गंधर्व हैं कि नाग हैं कि किन्नर हैं कि कौन है, क्योंकि यहां कोई साधारण मनुष्य तो आ ही नहीं सकता। और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर हो भी नहीं सकता। एक निवेदन करती हूं, मैंने आपको सब बातें बिल्कुल मेरी जानकारी के अनुसार सच्ची सच्ची बताई है, ऐसे आप भी अपना बिल्कुल सच्चा सच्चा परिचय दीजिएगा। कुबलयाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो ये पूछा है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, इसका उत्तर सुनो। ये कुबलयाश्व या ऋतध्वज दोनों एक ही आदमी के नाम है। मैं प्रारंभ से आपको सब समाचार बताता हूं। मैं राजा शत्रुजीत का पुत्र हूं और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहां मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा कर रहा था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए एक दानव शूकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बींद डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वो बड़े वेग से भागा, तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका खूब पीछा किया। फिर वो वरा एक गड्ढे में गिर गया, साथ ही मेरा घोड़ा भी उसी में कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक तो अंधेरे में अकेला ही बिचरता रहा। उसके बाद मुझे कुछ प्रकाश मिला और उसके बाद मेरी तुम्हारे पर दृष्टि पड़ी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया और तुम चटपट 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 करती महल में चली आई। मुझे कोई किसी बात का डर तो था नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस महल में आया और फिर इस देवी को देखा और आपसे बात की। ये मेरी सच्ची सच्ची बात है। न मैं देवता हूं, न मैं दानव हूं, न मैं नाग हूं, न गंधर्व हूं, न किन्नर हूं। देवता आदि मेरे लिए पूजनीय है। हे कुंडले, मैं मनुष्य हूं, तुम इस विषय में कोई संदेह मत करना। मैंने तुमको सच्चा परिचय दिया है। इधर इस सब प्रसंग को सुनकर के मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपने सखी के सुंदर मुख की ओर देखा। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, हे वीर, आपकी बात सत्य है, मेरे इसमें मेरे लिए कोई संदेह की बात नहीं रही। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त हो भी नहीं सकता था। चंद्रमा से अधिक सुंदर कौन हो सकता है? सूर्य से बढ़कर कौन तेजस्वी हो सकता है? ऐसी विलक्षण विभूतियां बहुत कम में होती है। धैर्य और क्षमा उत्तम पुरुषों को मिलती है। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने उस नीच दानव का वध किया। गोमाता सुरभि कैसे मिथ्या बोलेगी, और मेरी ये सखी बड़ी भाग्यशालिनी है, आप जैसे इसको सुयोग्य पति मिले हैं। हे वीरवर, जिस कार्य को विधाता ने रचा है वही विधाता आज आप दोनों का मेल करा रहा है। विधाता के संकल्प को पूरा करो। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूं, उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से किसी प्रकार विवाह नहीं कर सकता। आप सोचिए, पुत्र और पुत्री इन सब के विषय में उनके माता पिता का अधिकार होता है। कुंडला ने कहा, सखी ने, वो कुंडला सखी, नहीं 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 नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये आप मनुष्यों की बातें होंगी, जहां मां बाप के कहने पर होता होगा, यहां मनुष्यों की मर्यादा नहीं चलती, ये देव कन्या है और आप इसके साथ विवाह कर लीजिए, इस विवाह से आपके पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, अतः आप जल्दी से जल्दी इसके साथ विवाह कीजिए। राजकुमार ने कहा, सखी मुझे आपने पिता से मिलने के लिए समय भी नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, इन दैत्यों का कुछ भरोसा नहीं, जिस समय देवी ने, गौ माता ने यह कहा था कि जो उसको मारेगा उसके साथ विवाह होगा, उसमें यह नहीं कहा था कि वो अपने पिता से पूछेगा, फिर वो पिता हां भरेंगे तब विवाह होगा, ऐसा गौ माता ने नहीं कहा। इसका अर्थ है कि गौ माता कहीं से इस सारी योजनाओं को बना करके आई है, आपके पीछे सबका समर्थन है, पिता तो बहुत प्रसन्न होंगे। देखो अभी हम ऋषियों को बुलाते हैं और आपका यही विवाह कर देते हैं, और वे ऋषि भी जाकर आपके पिता को बता देंगे। कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित की और अपने कुल के गुरु तुम्बुरु ऋषि को याद किया, और उसी समय तुम्बुरु ऋषि समिधा और कुशा लेकर तत्काल वहां पहुंचे। मदालसा के प्रेम और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में कोई विलंब नहीं किया। वे मंत्रों के परम ज्ञाता थे, अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया। मंगलाचार के अनंतर कन्यादान की पूरी विधि संपन्न की और उसके बाद तपस्या के लिए अपने आश्रम की ओर चले गए। तदनंतर कुंडला ने अपने सखी से कहा, हे सुमुखी, मेरा कर्तव्य आज पूरा हो गया, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतध्वज उसके साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ कितना आनंद के साथ पूर्ण हुआ मैं जानती हूं। अब मैं निश्चिंत होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से मैं सर्वथा पवित्र हो जाऊंगी, उससे फिर ऐसी मेरी दशा न हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो कुंडला ने बड़े विनय के साथ राजकुमार से बातचीत की। इस समय सखी के अति स्नेह की अधिकता से कुंडला की वाणी गदगद हो गई थी। कुंडला ने कहा, हे महाराज कुमार, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है, आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मेरी जैसी स्त्रियां तो आपको क्या कह सकती हैं, किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया, इसलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण करा रही हूं। याद रखिए, पति को चाहिए कि वो सदा अपने पत्नी के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखे। जब पति और पत्नी प्रेम के अंदर बंधे रहते हैं तब उनके द्वारा स्वतः ही धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है, और क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही हो सकती है। यदि पति का मन धर्म में न रहे और पत्नी का धर्म में रहे तो वह दोनों को मिलकर के जो धर्म का लाभ वो नहीं होता। हे राजकुमार, स्त्री की सहायता के बिना पुरुष किसी देवता पिता भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पत्नी की रक्षा करता है तब वह अपने पितरों को उनको अन्न आदि के द्वारा और अतिथियों को पूजा आदि के द्वारा तथा यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म अर्थ काम संतान प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए पति और पत्नी दोनों का एक हृदय होना आवश्यक है। ऐसे प्रेमिल हृदय से, प्रेम से भरे हुए हृदय से धर्म अर्थ काम का सुख निर्भर रहता है, प्रेम पर निर्भर रहता है। आप दोनों नव दंपति के लिए ये सब निवेदन की है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार यहां से जा रही हूं। यूं कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार किया और देखते देखते दिव्य गति से जहां उसको जाना था वहां चली गई। इसका ज्ञान किसी को नहीं, बाकी किधर गई। ऋतध्वज ने मदालसा को अपने घोड़े पर बैठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। इधर दानू को जब ये बात मालूम पड़ी कि अरे पताल से एक मनुष्य हम लोगों के रहते हुए एक परम सुंदरी कन्या को ले जा रहा है जिसको हमने स्वर्ग से हरा था, राजकुमार ले जाएगा हमारे रहते, कितने ही दैत्य परिग खड्ग गदा त्रिशूल बाण धनुष नाना प्रकार के शस्त्रों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पताल केतु के साथ वहां आ गई। इधर वो राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा कर उसको ले जा रहा था तो लोग कहने, खड़ा रहे कहां जाता है इतना तेज में बल। दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों की त्रिशूलों की वर्षा कर दी। राजकुमार बड़े पराक्रमी, उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल फैला दिया और खेल खेल में दानवों के सारे शस्त्र काट डाले और क्षण भर में ही पताल लोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न वे खड्ग शक्ति दृष्टि और काय सायकों से आच्छादित हो गई। तदनंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और दानवों पर छोड़ दिया और उसकी प्रचंड अग्नि से पताल केतु सहित सारे दानव जल करके भस्म हो गए, हड्डियां चटक चटक करके राख हो गईं। जैसे कपिल मुनि ने सगर के पुत्रों को यूं दृष्टि डालकर भस्म कर दिया था ऐसी दशा होगी। इस प्रकार बड़े बड़े दानों का वध करके राजकुमार फिर अपने अस्त्रों पर खड़े हुए और स्त्री रत्न के साथ बड़े गौरव से पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने सारी बात बताई, कैसे मैं पताल में गया, कैसे कुंडला के दर्शन हुए, कैसे मुझे मदालसा मिली, कैसे मैंने दानुओं से युद्ध किया, इत्यादि सब समाचार सुनाए। पिता को तो ये सब बातें बड़े आश्चर्य सी लगी। पिता ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा ये क्या देख रहा हूं, कोई सपना है? नहीं नहीं नहीं, सपना भी नहीं है, ये क्या है बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी ये सब आपकी कृपा का प्रभाव, बेटा तुम सुपात्र हो, तुम महात्मा हो, तुमने हमको तार दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों के भय, मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था, मैंने उस यश को फैलाया और तुमने तो अपने अनुपम पराक्रम से उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। पिता ने जो यश धन और पराक्रम प्राप्त किया हो उसे जो कम नहीं करता है वह पुत्र मध्यम श्रेणी का होता है, और जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा अधिक पराक्रम दिखाता है उसे विद्वान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। किंतु जो पिता के द्वारा अर्जित धन शक्ति यश के घटा देता है वह महा अधम प्राणी कहलाता है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की उसी प्रकार तुमने भी की, लेकिन तुमने उससे ज्यादा की। पताल लोक की यात्रा करना और असुरों का अकेले तुम्हारे द्वारा विनाश हो जाना हमसे भी अधिक काम किया है, यह तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में मानी जाएगी। बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए स्पृणीय हो गया, माने उनके द्वारा वंदनीय हो गया। जिसका पुत्र बुद्धि दान और पराक्रम में उससे बढ़ नहीं जाता वह मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। जिसका पुत्र बुद्धिहीन हो, यशोहीन हो, दान पराक्रम आदि से बढ़ा न हो, उसको बेटे का सुख नहीं मिल सकता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है, केवल पिता होने का ही लाभ प्राप्त करता है, लेकिन जिसकी संतान श्रेष्ठ नहीं होती। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है उसी का जन्म सफल होता है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है वो मध्यम है। जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्ध होता है वो तो अधम है। इसलिए पुत्र तुम धन पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो, इस गंधर्व कन्या का कभी भी तुमसे वियोग न हो। इस प्रकार इस प्रकार बारंबार भांति भांति के वचन कहकर पिता ने रितद ध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा को आशीर्वाद दिया, और मदालसा और अपने पुत्र को वहां बड़े सम्मान के साथ रखा। राजकुमार रितद्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में उद्यान, वन, पर्वत शिखर पर बड़े आनंद के साथ विहार करते थे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन उठकर, ध्यान से सुनना, मदालसा प्रतिदिन उठकर अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति की आज्ञा में सदा रहती थी। दोनों नाग कुमार कहते हैं, तदनंतर बहुत समय बीत गया, राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमको प्रतिदिन प्रातःकाल घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमना चाहिए। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे मुनियों को बाधा न पहुंचे ऐसी चेष्टा करो। पिता की आज्ञा को पाकर के राजकुमार उस दिन से वैसा ही करने लगे। वे पूर्वान्न में ही सारी पृथ्वी का पराक्रम के पिता के चरणों में आकर प्रणाम करते। एक दिन की बात है, घूमते घूमते वे यमुना नदी के तट पर गए और वहां पताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा, वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले के बैर का स्मरण करके उसने कहा, राजकुमार मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वो करो, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। हे राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करूंगा, उसमें अनेक ईंटों की जरूरत पड़ेगी, इन सब के लिए ईंटों का चयन करना आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है, अतः हे राजकुमार तुम सुवर्ण के लिए मुझे अपने गले का ये आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से यहां बैठकर तपस्या करता हूं और अब मैं यज्ञ करना चाहता हूं। मेरे पास सब सामग्री तो है, तुम ये अपना गले का आभूषण दे दो बस। मैं तुम इस आश्रम में रहो, मैं अभी जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा के पोषण के लिए वरुण देवता से कुछ मंत्र लेकर आऊंगा और वरुण देवता के मंत्र से मैं वरुण देवता की स्तुति करूंगा और स्तुति करके उनको प्रसन्न करके और जल्दी लौट आऊंगा, तब तक तुम यहां रहना। राजकुमार ने देखा कोई ऋषि है, बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, अपने कंठ का आभूषण उतार के दे दिया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाओ, जब तक आप लौट नहीं आएंगे तब तक मैं आपके आश्रम के पास ही ठहरूंगा और ये आपकी इस आश्रम की रक्षा करूंगा, इस आश्रम को लेकर आप कोई चिंता मत करना। राजकुमार के ऐसा कहने पर ताल केतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने में लग गए। जल के भीतर से वे राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर कहने लगा। ताल केतु ने कहा, वीर कुबलयाश्व मेरे आश्रम के समीप गए थे, तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने अपने शक्ति भर युद्ध तो बहुत किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट पर उतारा, फिर उस पापी दैत्य ने माया का संहार लेकर सहारा लेकर शूल से उस ऋतध्वज की छाती का छेदन कर डाला और वे मर गए। हे महाराज, मरते समय उन्होंने मुझे ये गले का आभूषण दिया और रोते रोते कहा कि मेरे गले का आभूषण मेरे पिताजी को और स्त्री को बता देना। फिर तपस्वियों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, उनका अश्रु भयभीत होने से आंसू बहाता वह हिन हिनाता ही रह गया। उस अवस्था में वो दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ करके ले गया घोड़े को। मुझ पापाचारी दुष्ट ने ये सब अपनी आंखों से देखा, ऐसे राजकुमार की मृत्यु मैंने अपने आंखों से देखी तो मेरे जैसा संसार में कौन पापी होगा, धर्मात्मा पुरुष को ऐसे युद्ध में मरते देखा, अब आप लोगों के लिए जो कर्तव्य है वो आप लोग करें, मैंने तो उनकी मृत्यु के समय की इच्छा थी वो आपको बता दी। ये आप गले का हार अपने पास रखो, हम ऋषि मुनि किसी की वस्तु को लेकर क्या करेंगे। वो ताल केतु वहीं पर सबके बीच में हार छोड़ करके और जैसे आया था वैसे चला गया। सारे नगर में शोक की लहर हो गई, सारी स्त्रियां एकदम बेहोशी में डूबी हुई। इधर महारानी माने माता पिता विलाप करने लगे, पति को मारा गया सुनकर के मदाल सा थोड़ा आश्चर्य में डूबी, तुरंत अपने प्यारे प्राणों का त्याग कर दिया। ये तो आभूषण उन्हीं का है, अपने प्राणों को छोड़ दिया, मर गई। तदनंतर पूर्ववासियों तथा महाराज के महल से बड़े जोर जोर से रोने की आवाज आई। राजा शत्रुजीत ने जब मदालसा के पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा, सब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों, देवियों, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे और अपने लिए इस समय रोने धोने का कोई कारण नहीं देखता हूं। संसार के जितने संबंध हैं सब अनित्य हैं। इस बात का भली भांति विचार करने पर मैं पुत्र के लिए क्यों शोक करूं और अपने पुत्र वधू के लिए भी क्यों शोक करूं। सोचने से ऐसा मालूम पड़ता है ये दोनों भी शोक करने योग्य नहीं है। जो सदा मेरी सेवा में रहता था और मेरे कहने से ही ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, वह मेरा बुद्धिमान पुत्र शोक का कारण कैसे बन सकता है। जो अवश्य जाने वाला है उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया है तो इससे बढ़कर मेरे पुत्र की मृत्यु का और क्या सौभाग्य होगा। इस प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मेरी पुत्र वधु अपने स्वामी में अनुरक्त होकर के परलोक में चली गई तो उसके लिए भी मैं क्यों शोक करूं। क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि वह पति के न रहने पर जीवित रहती तो हमारे लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए और अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो जाती। इसको देख देख कर बार बार विचार आता कि देखो इसका पति मर गया, कैसा ये जीवन व्यतीत करती है, कैसी बच्ची मेरी पुत्र वधु के अपने स्वामी के मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके पीछे प्राण त्याग दिए। अतः विद्वान पुरुषों के लिए कभी जीवन में किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति के वियोग में बहुत दुखी होकर छटपटाती रहती हैं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अरे ये तो मृत्यु हमारे में भी होने वाली है। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी इसलिए इसने पति वियोग को दुख नहीं भोगा। जो इहलोक और परलोक में सब प्रकार का सुख देने वाला है वह पातिव्रत्य धर्म स्त्री के लिए कितनी ऊंची चीज है। अतः मेरा पुत्र ऋतध्वज, यह मेरी पुत्र वधु, मैं तथा ऋतध्वज की माता इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपने माता के सतीत्व, अपने वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया। तदनंतर कोवल्याश्व की माता ने अपने पति की ओर देख करके कहा, राजन मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसे कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। आज मेरी मां मिलती या बहन मिलती तो उससे मैं इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना मेरा बेटा आज ऋषियों की सेवा से मरा है, ये सुनकर प्रसन्न हुई हूं। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते हुए अत्यंत दुखी होकर लंबी लंबी सांस खींचते हुए हाय मैं मर रहा हूं, होय मैं मर रहा हूं, ऐसे करते करते प्राण त्यागते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौओं की सेवा में, ब्राह्मणों की रक्षा में, रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध किया है, शस्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे पुरुष तो बड़े धन्य होते हैं। जो याचकों, मित्रों, शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उससे पिता का वस्तुतः पुत्रवान होना सार्थक होता है। माता पिता का ऐसे पुत्र को जन्म देना सौभाग्य की बात है। पुत्र के जन्म में माता को क्लेश जरूर होता है, परंतु पुत्र यदि श्रेष्ठ होता है तो उसका ये क्लेश सफल होता है। और फिर शत्रुओं को प्राप्त करने में, ब्राह्मणों की रक्षा में, युद्ध भूमि में मारा जाए तो फिर कहना ही क्या है। तदनंतर शत्रु जितने अपनी पुत्र वधु मंदालसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकल करके पुत्र को जलांजलि दे दी। और इधर वही नालायक ताल केतु वापिस जमुना जल से निकल करके राजकुमार के पास आया और बड़े प्रेम पूर्वक मीठी मीठी वाणी में कहा, राजकुमार तुमने तो हमारे आश्रम की बड़ी रक्षा की, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, मैं तो यज्ञ की सामग्रियों को लाने के लिए गया, अब मैं सब सामग्रियों को ले आ रहा हूं, अब तुम जाओ और मैं बड़े आनंद के साथ यज्ञ करूंगा, मैंने इतने दिन की अभिलाषा की थी वो मेरी पूरी हो गई, मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए अब वरुण का ही यज्ञ करूंगा और उनके अभिलाषा के साथ मैं ये यज्ञ पूरा करने पर वरुण देवता का प्रिय बन जाऊंगा, इसमें तुमने हमारा सहयोग किया है, तुमको भी वरुण देवता का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। राजकुमार ने उस बनावटी ऋषि को प्रणाम किया और बड़े वेग से चल करके घोड़े पर बैठ करके अपने पिता के नगर में आ गए। क्या क्या ऋषि मुनियों ने कथा कही है। राजकुमार ऋतध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता यूं देख रहे हैं और फिर वे मदालसा को देखने के लिए पूछा कि वो कहां है। फिर वे उस अपने महल में गए तो वहां जाकर के देखा कि सब लोग नीचा मुख किए हुए, कोई बोलता नहीं है, सब उद्विग्न हुए हुए हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है, सबकी आकृतियों से आश्चर्य टपक रहा है, मुख पर अत्यंत हर्ष होना चाहिए, सब शोकाविष्ट है। माता पिता ने पूछा, ऋतध्वज हां पिताजी क्या बात है। ऋतध्वज तुम क्या बात है, क्या बात कर रहे हो आप, तुम ठीक तो हो ना। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारे पर कोई संकट आया, कोई नहीं आया। एक ऋषि के आश्रम की रक्षा कर रहा था, कोई युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ। बेटा तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे पर भगवान कोई आफत न भेजे, चिरंजीव रहो बस। कल्याण का आशीर्वाद दिया। और राजकुमार ने पूछा, पिताजी ये आप इतने आश्चर्य से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? बार बार जब वो राजकुमार पूछने लगा तो पिता ने कहा, बेटा जिस आश्रम की तुम रक्षा कर रहे थे वो ऋषि यहां आए और उन्होंने कहा कि आपकी तो वहां दैत्यों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। हम तो इस बात को सुन करके कि एक ऋषि के रक्षा के लिए यदि मृत्यु हुई, ब्राह्मण की रक्षा के लिए मृत्यु हुई, तो हमारे जैसा संसार में कौन गौरवशाली है? परंतु तुम्हारी मनोरमा परम सुंदरी मदालसा इस मृत्यु के दुख को सह नहीं सकी और वो वहीं पर प्राण त्याग दिए। हैं? वो मर गई। माता पिता के वचन सुने तो राजकुमार सोचने लगे कि ओहो, साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए। एक तो वो है और एक मैं हूं जो उसके प्राण त्याग की बात सुनकर जी रहा हूं। ओहो, मेरे जैसा कौन क्रूर है, कौन अनार्य है, मुझे मृत्यु नहीं हो रही है। ऐसी सती साध्वी पत्नी अब मैं जी करके भी क्या करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचार किया, वो मर गई, यदि मैं इसके निमित्त अपने प्राण देता हूं तो उसका क्या उपकार किया मैंने, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर वो हे प्रिय कहता हुआ रोता रहा। कहा कि रुदन तो अच्छी बात है, परंतु रोना अकेले में ठीक था, लोगों के बीच में रोने से मेरी प्रशंसा समाप्त हो जाएगी। मेरा काम पिता की सेवा करना है, ये जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः इस जीवन का त्याग नहीं करूंगा और अब मैं दूसरा विवाह करके स्त्री से संबंध नहीं रखूंगा, यही मेरे लिए मैं उचित समझता हूं। यद्यपि ऐसा करने से भी उसका उपकार तो नहीं होगा, तथापि विषय भोगों का त्याग करना तो श्रेष्ठ ही है। उपकार और अपकार कुछ भी नहीं होता, उसने मेरे लिए प्राण त्याग दिया, उसके लिए मैं क्या करूं और क्या उपाय कर सकता हूं। ऐसा विचार करके उसने मदालसा के लिए जलांजलि दी, उसके बाद उसका पूरा कर्म करवा दिया। ऋतध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी परम सुंदरी पत्नी मदालसा मुझे फिर न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं नहीं रह सकता हूं, यह मैंने सर्वथा सत्य विचार किया है। इस प्रकार मदालसा के बिना वे स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके अपने समवयस्क साथी लोगों के साथ मन बहलाते रहते थे, यही उनका कार्य रह गया था। परंतु ईश्वर कोटि में पहुंचे हुए व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत दुष्कर है, फिर भी लोगों की तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है, सारे शोक को पी लिया उन्होंने। नागराज अश्वतर बोले, पुत्रो यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेगा तो उद्योग छोड़ने से उनकी भारी हानि हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपने पौरुष का त्याग न करते हुए कर्म का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूं कि जिससे कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। यूं कहकर अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण क्षेत्र में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, तपस्या करने लगे। तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार करते और सरस्वती नदी में, सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु की जिह्वा रूपा सरस्वती देवी प्रकट हो महात्मा अश्वतर नाग से कहने लगी, ए कम्बल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो बताओ, मैं पूरा करूंगी। अश्वतर बोले कि पहले तो आप कम्बल को ही मुझे सहायक के रूप में दीजिए, फिर दोनों भाइयों के संगीत के समान स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा कि ठीक है। सारे ग म प ध नि, सात प्रकार के स्वर दिए। सारे ग म प ध नि सात होते हैं, सप्त स्वर दिए, सात ग्राम राग, सातों गीत, सातों मूर्छनाएं संगीत के अंदर, मूर्छनाएं 49 प्रकार की तान, 3 ग्राम, ये ग्राम ठहरने की धरती, तुम इन सब को तुम कंबल भी, तुम और तुम्हारा कंबल भाई वो भी गा सकते हैं। इसके सिवा मेरी कृपा से तो मैं 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का भी ज्ञान तुम्हें दे दिया है। ये सब तो मेरे प्रसाद से तुमको मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है वो सब तुमको और कम्बल को प्रदान करती हूँ। तुम दोनों भाई संगीत की कला में पूर्ण हो जाओगे, भूलोक देवलोक पाताल लोक में तुम्हारा समान कोई नहीं रहेगा। ऐसी सरस्वती देवी ने आशीर्वादात्मक वाणी कही और वो अंतरित हो गई, और दोनों भाई खूब उत्तम ज्ञान प्राप्त करके, संगीत का ज्ञान प्राप्त करके कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए और वीणा लय के साथ शंकर जी को बड़ा प्रसन्न किया। प्रातःकाल, रात्रि, मध्याह्न दोनों संध्याएं इस समय भगवान शंकर की स्तुति करते और भगवान को स्तुति सुनाते। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगू। तो महादेव जी को प्रणाम करके अश्वतर ने कहा, भगवान यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वर देवें। क्या कुवल्याश्व की पत्नी मदालसा, जो अब मर चुकी है, पहले की अवस्था में ही मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो, उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसे उसकी कांति थी वैसी योगिनी, वैसी योग विद्या की जननी होकर हमारे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कह दिया, तथास्तु, मेरे प्रसाद से वो तुम्हारी बेटी हो जाएगी। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध और प्रसन्न चित्त होकर खा लेना। उसके खा जाने लेने पर तुम्हारे मध्यम फण से कल्याणी मदालसा जैसे मरी थी उसी रूप में उत्पन्न हो जाएगी। तुम इसी कामना को मन में रख करके उस दिन पितरों का तर्पण करना, उनको तृप्ति देना, इससे वे तत्काल तुम्हारे बीच के फण से प्रकट हो जाएगी। महादेव जी को प्रणाम किया और पुनः रसातल में लौट आए। अश्वतर ने इसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया, फिर उस मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे। उस समय वो लंबे लंबे सांस ले रहे थे, तो ये बीच का फण, एक फण, दो फण, तीन फण, बीच के फण से तत्काल सुंदरी मंदालसा यह प्रकट हो गई और इसके रहस्य का किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ। मदाल साकू महल के भीतर फिर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। और इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते ऋतध्वज के साथ देवताओं की भांति खेलते कूदते। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बताया था उसे तुम नहीं करते क्या? पुत्रों, राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता है, फिर उनका भी उपकार करके तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं चले आते? अपने स्नेही पिता के यूं कहने पर दोनों मित्र नगर में गए और बातचीत चला करके उन्होंने कोवल्याश्व को अपने घर चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने जगा कि मैं आप सके, ये घर भी तो आपका है, मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? यहां धन वाहन वस्त्र जो कुछ मेरा है सब आपका है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो वो प्रेम ही तो ठीक है, घर ले जाने से क्या होगा? यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन रत्न आदि कुछ किसी वस्तु को देना चाहें यहां से ले जाकर आप किसी को दे सकते हैं। दुर्देव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया, ऐसा ही मेरा भाग्य था। आप मेरे घर को अपना नहीं समझते क्या? यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे धन और घर को आप लोग अपना समझो। आप लोगों का जो कुछ है वो मेरा है, मेरा है वो आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहर के प्राण हो। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूं आप मुझ पर कृपा करो और ऐसी भेदभाव की सूचक बातें अपने मन को मत, अपने मुंह से हमको मत कहो। दोनों नाग कुमारों के मुख आंसुओं से भीग गए और कहने लगे, ऋतध्वज तुम जो कहते हो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, हमारे मन में भी ऐसी बात है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुवल्याश्व को देखना चाहता हूं और कहा कि अच्छी बात है, पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूंगा। उन्होंने जाकर प्रणाम किया और फिर कहा कि अच्छा मैं आपके वहां चलता हूं। अब वे ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ उनके पिता के घर के लिए रवाना हो गए और गोमती नदी के तट पर आ गए।